फिर आगे फरमाया, और देखो अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद कुछ ना जाने। हाईलाइट करें इसको, मेरे रब पे वो उम्र आने वाली है, चाहे 10, 20, 25, 30 साल में आ जाए या कुछ सालों में आ जाए। और वो क्या, केला रसलेल उमरी लिकैला यालम बाद इल्मिन शैया। आज इंसान इतना बड़ा बनता है, बोलता है तो बोलता ही जाता है, हो सकता है एक दूध का ग्लास मांगने में घंटा लग जाए। बुढ़ापा बहुत बड़ी बीमारी है। एक वक्त आता है इंसान किसी को खातिर में नहीं लाता, चलता है, भागता है, दौड़ता है, दूसरों को बिताने देता है, मैं इतना काम करती हूँ तुम नहीं करते। और एक वक्त आता है कि बाथरूम में जाने से पहले आधा घंटा सब्र करता है, रोक ही लूँ अपने आप को तो बेहतर है, कैसे जाऊंगी, फिर हिम्मत टूट जाएगी। जैसे बच्चे को कुछ नहीं पता होता, इसी तरह इंसान सब कुछ जानने के बाद फिर भूल जाता है, याददाश्त चली जाती है। अक्सर लोगों के दांत निकल जाते हैं, फिर दोबारा उगने लग जाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बाल सफेद होते हैं, 100 के करीब पहुंचते तो बाल फिर काले हो जाते हैं, उनके दांत दोबारा नए उगाते हैं। बच्चे और बड़े में फर्क देख लीजिए, जैसे बच्चे अक्सर दूध ही पीते हैं तो बुढ़ापे में भी अक्सर बूढ़े दूध ही या दूध की बनी हुई कोई चीज ले लेते हैं। दोनों बड़बड़ाते रहते हैं, बात को दोहराते रहते हैं। अगर आपके घरों में कोई ऐसा बूढ़ा है, अपने लिए उसको दुआओं की पोटली बना लें, जैसे बच्चों की लाड करते हैं ना वैसे बूढ़े माँ बाप की लाड करें, खिसाएं, खेलें, उनको कहानियां सुनाएं, उनसे उनके बचपन की बातें सुने, खिलखिलाएंगे, शर्माएंगे कभी जाके कि अम्मा सुनाओ आपकी शादी कैसे हुई थी, अम्मा वो जो बचपन में मुझे सुनाती थी वो कहानी सुनाना। हम अपने बड़ों को टाइम नहीं दे पाते, हम कहते हैं क्या आप इनको खाना तो देते हैं, दवाइयां तो ला दी हैं ना, वो और इनको क्या दें, उनको आपकी दवाइयां नहीं चाहिए। अगर बचपन में माँ बाप को बच्चे सिर्फ दवाइयां ला के दे दें या मेड्स के हाथ में डाल दें तो क्या बच्चे खुश होते? तो लिहाजा इन बूढ़ों की कदर करनी है, ये दुआओं की चीज़ है और ये हकीकत में ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के लिए खैर का जरिया बनती है। फरमाया हक यह है कि अल्लाह इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। और देखो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क पर फजीलत दी, फिर जिन लोगों को ये फजीलत दी गई वो ऐसे नहीं कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हो ताकि दोनों इसमें बराबर हो जाएं, तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों का इनकार है? शिर्क की कितनी खूबसूरत निगेशन है कि आप चाहते हैं कि आपके मुलाजिम का और आपका बैंक अकाउंट एक ही हो जाए ताकि जितनी आपकी दौलत है उसको शेयर करके आधी उसकी दे दें, तो हम तो ये नहीं चाहते। तो क्या अल्लाह ने बुजुर्गों और बुतों के नाम पे कुछ चीजें रखी हुई हैं कि तुम इनको अपनी तरफ रख लो? नहीं, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारी हम जिन्स बीवियां बनाई और उसी ने बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दी। सोचे बीवी हम जिन्स और आज हम क्या ढूंढते हैं, वो परी कहां से लाऊं जिसे दुल्हन बनाऊं। अल्लाह ने कहा एक ही जिन्स की, आप परियां ढूंढ रहे हैं, तभी तो मिलती नहीं है, तो फिर बेटा भी और बूढ़ा हो जाता है, फिर बिल्कुल ही नहीं मिलता। फिर आप यहाँ देखिए हफदा पोते, ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर, कितना प्यार होता है लोगों को इनसे। मैंने देखा है लोग इनका नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, किसकी नेमत है, इंजॉय करें अपनी इन नेमतों को। अल्लाह का ये दिया हुआ सब कुछ और जो कुछ खाने को दिया तो उसके लिए तो बस इफ्तारी की टेबल ही याद कर ले। फिर क्या लोग ये सब कुछ जानते हुए और देखते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर इनको पूछते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों में से इन्हें कुछ रिस्क देना है ना जमीन से और ना ये वो काम कर सकते हैं, बस अल्लाह के लिए मिसाल लेना खड़ो। अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, अल्लाह एक मिसाल देता है। इमेजिन कीजिएगा शिर्क की निगेशन है, एक तो गुलाम है जो दूसरे का ममलूक है और खुद को इख्तियार नहीं रखता, दूसरा शख्स ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया, वो इसमें से खुले और छुपे खूब खर्च करता है, बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग इस सीधी बात को भी नहीं जानते। मिसाल है मवाहिद और मुशरिक की, जो एक रब से मांगता है ना वो आजाद है, जो रब को छोड़ के दूसरों से मांगता है वो ऐसे ही है जैसे कोई किसी का गुलाम हो। अल्लाह एक और मिसाल देता है, दो आदमी एक गूंगा बहरा कोई काम नहीं कर सकता, अपने आका पर बोझ बना हुआ, जिधर भी वो इसे भेजे कोई भला काम इससे बन नहीं पाता, दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है और खुद भी राह रास्त पर कायम है, बताओ क्या ये दोनों यक्स हैं? बिल्कुल नहीं। कोई एक ऐसा मुलाजिम हो जो सही काम करे और एक ना करे, हर एक के पास कोई ना कोई ऐसी जरूर मिसाल होगी कि उनके मुलाजमों ने बेकार काम किए हो। हमारे पास एक बूढ़ा बाबा था, बहुत ईमानदार, बहुत उसकी अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं मुझे। तो एक दफा उसको लिखा कि फलियां ले आओ 1 किलो, तो वो फुलियों का इतना बड़ा लिफाफा लेके आ गया। फुलियां पता क्या होते हैं? वो सूखे चावल जो भुनते हैं ना भट्टी में चावलों को उबाल के, तो बोलते ना फुलिया सी चने और फुलिया लोग खाते थे, तो इतना बड़ा लिफाफा उठा के आ गया। इसी तरह एक दफा चिकन लेने गया, जब घर आया, अब उस दौर में चिकन हाथों से कटी थोड़ी साथ ही साथ लोग मंगाते थे, ऐसी बाबे को बता दिया कि बाबा एक टांग है मुर्गी की, उसने जो कसाब था उसने गलती से नहीं दी या क्या। बस फिर हम तो भूल गए, घंटा डेढ़ गुजरा, बाबा जी हाथ में एक टांग पकड़ के ला, एक और मुर्गी कटा के उसकी टांग लेके हराम खाते हैं, ये करते हैं, यानी उसके जाके कसाब से वापिस एक और मुर्गी कटा के उसकी टांग लेके आया। तो इस तरह के लोग होते हैं, कई सीधे होते हैं, कई अच्छे हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल बड़े स्मार्ट होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं मोमिन स्मार्ट होता है, वो मुशरिक की तरह का नहीं होता। फिर इसी तरह आगे फरमा दिया, अल्लाह ही जमीन आसमान के छुपे हुए हकायक का इल्म रखता है, और क्यामत के बर्पा होने का मामला कुछ देर न लेगा, मगर बस इतनी ही जिसमें आदमी की पलक छपक जाए। छपके जरा पलक अपनी, कितने सेकंड लगे, एक सेकंड से भी कम में पलक छपक जाता है इंसान, इस तरह अचानक क्यामत होगी, और हो सकता है वो अगली खड़ी हो, नो वन नोज, बल्कि इससे भी कुछ कम। हकीकत ये कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। इस पे 3 सेकंड तक गौर करे कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब अपनी पैदाइश को सोचिए, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ न जानते थे, इसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, और सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार हो। 3 सेकंड सोचिए, क्या वाकई सोचती हूँ? चंद बातें पूछ लें खुद से, क्या मैं कानों का सही इस्तेमाल करती हूँ? क्या मैं आंखों से कोई गलत चीज तो नहीं देखती? क्या मैं, मेरा दिल सोचता है या बगैर सोचे काम करती हूँ? क्या मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ? क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की फिजा में किस तरह मुसख्खर है? अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इस पे बहुत निशानियां इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। हाईलाइट करें, घर और सुकून लाजिम मलजूम है, और जिन घरों में सुकून नहीं है ना, वहां से फिर क्रिमिनल्स पैदा होते हैं। जब तक घर में सुकून था, नस्लें खूबसूरत थी, जब घर बेसुकून हुआ तो नस्लें तबाह बर्बाद हो गई। आज वेस्ट का मसला क्या आपको पता है? क्यों बच्चे इतने जल्दी ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं? क्यों जिना और गंदगी में पड़ते हैं? क्यों उनको शुरू से ही शौक आ जाता है कोई हमसे मोहब्बत करे, हम किसी से? क्योंकि घरों में वो बेचारे इग्नोर्ड होते हैं। 6-6, 7-7 दिन के बच्चों को माएं बेबी सिटर्स के पास छोड़कर जॉब्स पे जाती हैं, और वो बच्चे माओ को तरसते रहते हैं। तो घर औरत से बनता है, पैसे से नहीं बनता, इसलिए अपने घरों को पुरसकून बनाए। और घर का सुकून किस चीज में? घर साफ हो। गंदे और बिखरे हुए घर और ओवरलोडेड घर में कभी सुकून नहीं होगा। साफ सुथरा हल्का फुल्का सा घर हो आपका, कुछ अरसे फिर चेंज कर लें, और चीजें जो रखनी है वो सारी इकट्ठी रखने की बजाय बाद में कुछ महीने बाद चेंज कर लें। लेकिन अपने घरों को स्टोरेज ना बनाएं कि जिसके साथ सुकून ना, फिर वो घर पुरसकून होता है जहां अल्लाह को याद किया जाए। और होम रूल्स तो आपको दिए ही गए, जिनको नहीं मिले अभी बाहर से ले लें। ये घर को पुरसकून बनाने का तरीका है। लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, एक दूसरे के हकूक को समझें। फरमाइश ने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफर और क्याम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। क्या मुराद है? टेंट्स। जरा पूछिए, क्या मेरा घर इजी टू मूव है? अल्लाह कहते हैं तुम्हारे घर मूवेबल होते हैं, सफर में भी लेके चल पड़ते हो, जहां रुकते हो उसको खड़ा करके खोलते हो तो तुम्हारा हैमा बनता है, सफर में उसको लाद के चल पड़ते हो। क्या मेरा घर हल्का फुल्का है कि भारी है? कितने सेकंड दो सोचने के लिए, मिनट, घंटे? अगर आपको एक काम दो, अपने घर की A to Z चीजों की लिस्ट बना के लाए, अगले साल के दौरे कुरान तक बन जाएगी। दे दूं ये काम ईद की छुट्टियों में? करेंगे? छोटा सा कोई कोना ले लें, कल करके लाए, नहीं चले ना से। रमजान में रोजे की हालत में आपसे काम नहीं लेते, लेकिन यकीन करें हम थक जाएंगे। वाइन तो दुने मत अल्लाह हिला तुखसुहा वाला हाल है हमारे घरों का। काम की चीजें तो हो ना, कारा ना रखें या एक्स्ट्रा ना रखें कि आपकी जिंदगी सिर्फ उसी के साथ गुजर चली जाए। इसने जानवरों के सूफ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीजें पैदा की जो जिंदगी की मुद्दतें मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती हैं। इसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए साय का इंतजाम किया। पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाह गाहें बनाई, गारे मुरादें से केव्स। और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं, और कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है, शायद कि तुम फरमा बरदार बनो। पतली लॉन पहनते हैं, गर्मी से बचते हैं, कितना अल्लाह का शुक्र करते हैं। आप सोचिए कि पतले कपड़े ना होते और गर्मी होती, मोटे कपड़े ना होते और सर्दी होती, कॉन्सेप्ट ही ना होता मोटे कपड़ों का, ठुठर ठुठर के मर जाते, और कोई बारीक कपड़े का कॉन्सेप्ट ना होता। और आपने देखा जो प्योर चीजों का मजा, सिंथेटिक भी अच्छा लगता है लेकिन जो प्योर कॉटन, प्योर लॉन, प्योर सिल्क पहन के आपको मजा आता है, वो आर्टिफिशियल चीजों में नहीं। किसने करा ये सब कुछ, जिसकी किताब में और आप पढ़े प्यार से इस किताब को छुए, कि जिसने सारी कायनात इतनी प्यारी बनाई, क्या फिर वो शरीयत अच्छी नहीं होगी? क्या वो किताब अच्छी नहीं बनाएगा? उसका दीन काबिले अमल नहीं होगा? नहीं, इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है, शायद कि तुम फरमाबरदार बनो। जब आप अपने आप खुद देंगे, शायद के यकीनन, क्या सोचते हैं? यकीनन इंशाल्लाह। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो नबी आप पर साफ साफ पैगाम हक पहुंचा देने के सिवा कोई और जिम्मेदारी नहीं, ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं। और इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हक मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो मानते ही नहीं कि अल्लाह है, वो अल्लाह का हक अपने ऊपर लेते नहीं, वो कहते हम अपने खुदा खुद हैं। इन्हें कुछ होश भी है इस रोज क्या बनेगी, जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को ना तो हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा, ना इनसे तौबा इस्तगफार का मुतालबा ही किया जाएगा। जालिम लोग जब एक दफा अजाब देख लेंगे तो इसके बाद ना तो इनके अजाब में कोई कमी की जाएगी और ना उन्हें एक लम्हा भर मोहलत दी जाएगी। फिर और जब ये लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे, अब इमेजिन करें सारी जिंदगी किसी और के सहर में खोए रहे, क्यामत के दिन क्या हुआ? कहेंगे ए परवरदिगार, यही है हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस पर उनके वो माबूद इन्हें साफ जवाब देंगे कि तुम झूठे हो। इस वक्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और इनकी ये सारी झूठ बाजियां खत्म हो जाएंगी जो वो दुनिया में करते रहे। जिन लोगों ने खुद कुफर की राह इख्तियार की और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका नहीं, इन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे उस फसाद के बदले में जो वो दुनिया में बर्पा करते रहे। ए नबी, इन्हें इस दिन से खबरदार कर दो, हम सब भी सुन लें, कि जबकि हम हर उम्मत में खुद इसी के अंदर से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जिसके मुकाबले में शहादत देगा, और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे। और ये इसी शहादत की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी जो हर चीज की साफ साफ वजाहत करने वाली है, और हिदायत और रहमत और बशारत इन लोगों के लिए जिन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया। अपने आप से पूछें, दूसरे पारे से ये मजमून चल रहा है, शहादत हक की गवाही, 14th पारे पे पहुंचे हैं, खुद से जवाब ले, क्या इन 14 पारों तक मेरे अंदर ये एहसास बढ़ा के कम हुआ कि मैं इस दुनिया में हक को फैलाने के लिए आई? हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग वाकई अब इसको महसूस करते हैं। एक के पता चल गया हम जोश दे रहे हैं, हम बहुत शिद्दत से गए, कितनों को रियली अब ये फील होने लगा है कि मैं कुछ करने के लिए भेजी गई हूं? तो मुबारक है आपको, फिर आपने इस मकसद को पा लिया है जिसके लिए रोज आके बैठते हैं, बस अब अल्लाह ताला इसके तकाजे निभवा ले हमसे। बहुत अहम आयत है ये आयत, जो उस्मान बिन मज़ऊन जो थे वो इस आयत को सुन के मुसलमान हुए थे, बहुत ही प्यारी है। इसके अंदर तीन बातों के करने का हुक्म है, तीन से रुकने का हुक्म है, देखिएगा। इन अल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसानि व ईताए ज़िल क़ुरबा, अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है। अदल किससे? अल्लाह के मामले में। कैसे? किसी को शरीक ना बनाओ। एहसान किधर? दीन की हर चीज में आसन दर्जे पे करो, अदल से अगला दर्जा है। और ईताए ज़िल क़ुरबा के सिला रहमी, अपनों से बनो। क्या होती है सिला रहमी? वो आपको दावत पे बुलाएं तो आप भी बुला लें, वो आपको ईद का गिफ्ट दें तो आप भी दें, ये तो बराबरी है, ये तो आप सबसे करते हैं। सिला रहमी क्या है? वो रिश्तेदार जो आपसे कटे आप उनसे जुड़े, जो आपको गालियां दे आप उनको दुआएं दें, जो आपको ताने दे इल्जाम दे आप उनकी तारीफें करें, ये है सिला रहमी। आप बताएं कितने लोग सिला रहमी करना चाहते हैं? अल्लाह ने अपने रहम के साथ इसको जोड़ा हुआ है। हदीस में आता है कि सिला रहमी को अल्लाह ने रहम से जोड़ दिया, और क्यामत के दिन इस सिला रहमी की वजह से लोगों को आगे करेगा। तो रिश्तेदार बहुत बड़ी नेमत होते हैं, केयर दें, उनकी केयर करें। कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें चलती हैं, मट्टी डालें दिल में ना रखें। मैंने देखा सबसे ज्यादा हमारे दिल रिश्तेदारों से बुरे होते हैं, गैरों से हम कहते हैं प्यार मोहब्बत, अपनों की लेग पुलिंग, अपनों से बहुत प्यार करें। सिला रहमी अल्लाह की रहमत को लाती, उम्र लंबी हो जाती है, रिस्क में बरकत होती है। तो आज इस नियत से किसी एक रिश्तेदार को फोन करें, बुला लें, खाने पे बुला लें, दावत कर लें, मैसेज कर लें, और खास तौर पे उससे जो आपसे नाराज हो, जिसने आपको दुखाया हो, करके देखें जरा सी, मतलब एक थ्रेश होल्ड है, बस इसमें से निकलें, उसके बाद आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के लिए आज अपने किसी रिश्तेदार को कॉल करें जो आपसे रूठा हुआ है, या आपके और उसके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी और आप दोनों अपनी अदा में बैठे, मैं कहूँ चाहे आपके घर के हस्बैंड ही हो सकते हैं, कोई अपने करीब का भाई बहन ही हो सकता है, आज कह के मैंने इस आयत पे अमल करना है कि इताए ज़िल क़ुरबा करना है, तीन चीज़ों से रोका, किससे गया, वयनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बगी, और बदी और बेहयाई और जुल्म और ज्यादती से मना करता है। बदियां छोड़नी पड़ेंगी, फुहश छोड़ना पड़ेगा। फुहश क्या है? अल्लाह को नाराज करने वाले काम है, और जुल्म और ज्यादती से रुकता है। वो क्यों? वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। हर जुमे के खुतबे में ऑलमोस्ट ये आयत पढ़ी जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर से इसको खुतबे जुमा में शामिल किया गया, क्योंकि इस आयत में मकसद बहुत अहम है। लेकिन आज देखिए लगता है इस सोसाइटी को जिसमें ये आयत पढ़ी जाती है, खून के रिश्ते दुश्मन बने पड़े हैं, सगे खानदानों में कटाव पड़े हुए हैं, और फुखश और बेहयाई की तो बात ही ना कोई करे। वाउफ बेअहदिल्ला, अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुमने इससे कोई अहद बांधा हो। कोई बांधा अहद आपने? मैंने सब बोले क्या अहद है मेरा आपके अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अहद है, प्लेज करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और क्या कहते हैं, मशहदो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद तोड़ न डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके। अल्लाह तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है, तुम्हारी हालत उस औरत की सी ना हो जाए जिसने आप ही मेहनत से सूत काटा, फिर आप ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकर व फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फायदे हासिल करे। आज दुनिया में यकीन कर लें यूनिवर्सली यही हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनकी अथॉरिटीज है ना वो गरीबों का खून भी निचोड़ने को तैयार है। हालांकि अल्लाह इस अहदो पैमान के जरिए से तुमको आजमाइश में डालता है, और जरूर वो क्यामत के रोज तुम्हारे तमाम इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में कोई इख्तलाफ ना हो तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखाता है, और जरूर तुमसे तुम्हारे आमाल की बाज पुरस होकर रहेगी। हाईलाइट करें, क्या मुझे यकीन है इस बात का कि मुझसे मेरे आमाल के बारे में पूछा जाएगा? फिर तो अमल ठीक हो जाए हमारे।